नमः बुद्धाय। जय भीम। सो वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्राउंड ऑलरेडी।
तो बहुत सारी बातें अब तक हम देख चुके हैं।
एंड एज यू नो वी हैव बीन लुकिंग एट व्हाट अ न्यू माइंड लुक्स लाइक।
और हम इस ओर देख रहे थे कि वो नया मन कैसा होता है, किस तरह वो दिखता है।
And how to bring about the change to a new mind.
और उस नए मन में हम किस तरह से अपने अभी के मन को परिवर्तित कर सकते हैं।
And we've been talking about what we're calling mind training.
और हम इस विषय में बात कर रहे थे कि जब हम मन का प्रशिक्षण कहते हैं तो उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है।
बाबा साहब talks about reform of the mind.
तो बाबा साहब जो है मन को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की बात करते हैं।
Elsewhere he does speak of training the mind.
और कई जगह पर वो मन के प्रशिक्षण की भी बात करते हैं।
So that's what we're exploring, how to train the mind, how to reform the mind.
तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मन को हम किस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, मन में हम किस तरह से क्रांति ला सकते हैं, उसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं।
And this morning I was looking at what we're reforming the mind towards, if you see what I mean.
और आज सवेरे हम ये देख रहे थे कि हमारा मन जो है हम किस दिशा में या किस चीज में परिवर्तित कर रहे हैं।
And we saw that we're changing craving into generosity.
और हमने देखा कि हम तृष्णा का जो है रूपांतरण कर रहे हैं दातृत्व में।
We saw that we're changing hatred into maitri.
और हमने देखा कि द्वेष का हम रूपांतरण कर रहे हैं मैत्री में।
And we saw that we're transforming ignorance into awareness, ultimately to wisdom.
और हमने देखा कि अज्ञान का हम रूपांतरण कर रहे हैं जागृति में, स्मृति में, और वहां से आगे बढ़ते हुए प्रज्ञा में।
And we saw we need to be doing that moment by moment by moment.
और हमने ये भी देखा कि हमको ये हर क्षण में करना है।
And that mainly starts with recognizing your own reactions.
और इसकी शुरुआत हम अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान कर करते हैं।
एक्सेप्टिंग देम,
उन्हें स्वीकृत करके,
एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग देम,
और उसके बाद उनमें परिवर्तन लाके।
सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ रिफॉर्मिंग द माइंड।
और ये जो है हमारे मन को पुनर्निर्मित करने में का मुख्य कार्य है।
नथिंग एल्स विल वर्क।
दूसरी कोई भी चीज काम नहीं आएगी।
यू कैन पुट एज मेनी गार्लैंड्स एज यू लाइक अराउंड बाबा साहेब्स स्टैच्यू एंड देयर वोंट बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आप चाहे जितने हार चढ़ा सकते हैं बाबा साहब के स्टैच्यू पर, पुतले पर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है।
यू कैन ऑफर एज मेनी स्टिक्स ऑफ इनसेंस एज यू लाइक, देयर वोंट बी ट्रांसफॉर्मेशन।
आपको जितनी अगरबत्तियां जलानी है आप जला सकते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा।
इवेंचुअली द वर्क नीड्स टू गो ऑन directly with your own mental states.
और आखिर में आपको अपनी ही मानसिक अवस्थाओं पे कार्य करना होगा।
I really wish there was a mind training pill.
तो मेरी ऐसे बहुत इच्छा है कि ऐसी कोई एक गोली होनी चाहिए कि मन को प्रशिक्षित करने वाली गोली।
We could go to Takshu or Pranali and say, please, can you train my mind?
और हम तक्षु या प्रणाली के पास चले जाते हैं, बोलते कि क्या आप हमको हमारे मन को प्रशिक्षित कर सकती हैं?
They could charge quite a lot of money.
और बहुत सारा पैसा वो ले सकते थे हमसे।
They could give us a bodhisattva pill.
और वो हमको एक बोधिसत्व की गोली दे देते।
But I'm afraid, Don't waste your money like that.
लेकिन मुझे खेद है और आप अपना पैसा इस तरह से बर्बाद मत कीजिए।
In the end, you just got to do that basic effort, looking at your mental states and transforming them.
और अंत में आपको वही जो है मूलभूत प्रयास करना पड़ता है कि आपकी अपनी मानसिक अवस्थाओं की ओर देखना और फिर उन्हें परिवर्तित करना।
Very inconvenient. This itself is an inconvenient truth.
और ये बात बहुत ही असुविधाजनक होती है और ये खुद ही अपने आप में एक हमारे लिए असुविधाजनक ऐसा सत्य है।
Our minds automatically think somebody else is responsible for our happiness or unhappiness.
तो हमारा मन जो अपने आप ये सोचने लगता है कि कोई और जिम्मेदार है मेरी खुशी का या गम का, दुख का।
That's how most of the religions in the world work.
और बहुत सारे जो दुनिया के धर्म हैं वो इसी विश्वास पर या इसी आधार पर कार्य करते हैं।
If we can please the cosmic officer, he will give us happiness.
तो जो ब्रह्मांड का अधिकारी है उसको अगर हम खुश कर पाए तो वो हमको खुशी दे देता है.
But the Buddha Dhamma is not like that.
लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है.
It puts the responsibility in our own hands.
और वो जो है हमारी सुख दुख की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ही हाथ में डाल देता है.
Which is one of the remarkable things about Baba Saheb's choice of the Buddha Dhamma.
और ये बहुत ही एक विलक्षण बात है कि क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का चुनाव किया था.
The people of that time were extremely poor, usually uneducated.
उस वक्त के लोग जो है बहुत गरीब थे और अशिक्षित भी थे.
But he gave them the most difficult religion there can be.
और उन्होंने उनको ऐसा धर्म दिया जो सबसे ज्यादा मुश्किल था. उससे ज्यादा मुश्किल कोई धर्म और हो ही नहीं सकता था.
He had that much respect for them that he gave him the religion that requires them to take responsibility.
तो उन्होंने उन लोगों को वापस अपने इतना सम्मान से देखा कि ये लोग उस धर्म को स्वीकार सकते हैं कि जिसमें इस तरह की जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है.
And in the end, it's responsibility for your own mind.
और आखिरकार ये जिम्मेदारी क्या होती है तो आपके अपने मन की ये जिम्मेदारी होती है.
You know, you get a license to drive a car.
तो आपको पता है कि अगर आपको कार चलाना है तो आपको लाइसेंस मिलता है.
But most people should be not allowed to drive their own minds.
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको तो इस बात की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने मन को चला सके.
They're not taking enough responsibility.
क्योंकि वो जो है अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते पर्याप्त मात्रा में.
So that's the basic method of reforming the mind.
तो ये मूलभूत तरीका है मन को पुनर्निर्मित करने का.
Of course, there's a lot of other things we can talk about that will help and support that.
तो बहुत सारी अन्य बातें हैं जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं जो हमारी मदद करेगी और जो हम बात कर रहे हैं उसको और अधिक आधार प्रदान करेगी.
For instance, making offerings is a good way of supporting the reform of your mind.
तो उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी चीज को अर्पण करते हैं, कोई चीज देते जाते हैं, तो वो भी हमारे मन को पुनर्निर्मित करने का बहुत अच्छा माध्यम होता है.
And we may talk a bit more about that tomorrow.
और उसके विषय में हम कल थोड़ा सा और अधिक बात करेंगे.
But in the end, you just got to do the work.
लेकिन अंत में आपको वो काम करना ही होता है.
But there's another aspect to mind training which comes at things from a quite different point of view.
लेकिन मन के प्रशिक्षण का एक अन्य भी पहलू है जो बहुत ही अलग दृष्टिकोण से आता है.
And actually it's even more difficult.
और ये जो पहलू है ये पहले वाले से और भी ज्यादा मुश्किल है.
And this involves really understanding very directly that there is no fixed I.
और इसका संबंध है बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझना कि कोई भी नित्य ना बदलने वाला स्थाई ऐसा मैं या आत्मा नहीं है.
And this is what's usually called vipassana.
और इसी को आमतौर पे विपश्यना भी कहा जाता है.
And it's much broader than what we understand by vipassana in the modern context. It's a much broader practice or activity universally recognized in Buddhism.
तो आमतौर पे विपश्यना को हम जिस तरह से समझते हैं आधुनिक संदर्भ में, विपश्यना उससे भी कई ज्यादा गहरी और बहुत ही अलग किस्म का अभ्यास है जिस तरह से मतलब उसे पूरी दुनिया में देखा जाता है.
It is difficult.
बहुत मुश्किल है.
But we should all be working at this too.
लेकिन हम सबको इस पहलू के लिए भी कार्य करना चाहिए.
So it's what's involved is seeing directly that there is no fixed I.
तो इसमें क्या है कि भी हम बहुत प्रत्यक्ष रूप से देख ले कि कोई भी नित्य ऐसा स्थाई ऐसा मैं नहीं है.
So if you can see that clearly enough, well, you're free from it.
और अगर आप ये पर्याप्त रूप से स्पष्टता से देख पाए तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं.
And then the bodhisattva's mind emerges within you.
और फिर आपके अंदर जो है बोधि सत्व का मन जो है वो उत्पन्न होता है.
So let's look at this a bit closely.
तो इसकी ओर हम और भी करीब से देखेंगे.
I'm not just going to talk about it. I'm going to ask you to do a bit of work.
तो मैं केवल उसके विषय में बात नहीं करने वाला हूँ, तो मैं आपको कुछ करने के लिए कहने वाला हूँ.
Or rather, while I'm talking, do some work.
या फिर इस तरह से हो सकता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ आप अपने भीतर कुछ कार्य कीजिए.
So the basic point is that we believe, deeply believe, that there is a fixed self.
तो मुख्य बात ये है कि हम बहुत गहराई से इस बात में विश्वास करते हैं, ये हमारा विश्वास होता है कि एक स्थायी मैं है.
In fact, it's difficult to think that there isn't.
और ये सोचना ही बहुत मुश्किल है कि नहीं है.
Because our whole experience seems to validate that.
क्योंकि हमारा जो सारा अनुभव होता है उस बात की पुष्टि करता है कि मैं है.
So what we think is that somewhere having our experience there is a permanent self.
तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं तो कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव को अनुभव कर रहा है, अनुभव की अनुभूति ले अनुभूति ले रहा है और वो लेने वाला मैं हूँ.
And that fixed self is there, whatever we're experiencing.
और ये मैं जो है, ये स्थायी मैं जो है, वो हर बात में है जिसका मैं अनुभव ले रहा हूँ.
And essentially, it's not changed by experience.
और एक तरह से अनुभव के आधार पर उसमें कोई बदलाव भी नहीं आता है, मतलब अनुभव उसको बदल नहीं पाता.
We feel it stands, as it were, independent of our experience.
और हम उसके विषय में इस तरह से सोचते हैं कि वो हमारे अनुभव से बिल्कुल ही स्वतंत्र है.
We don't think about it, but that's effectively what we believe.
तो हम उसके विषय में इस तरह से सोचते नहीं है, लेकिन यही हमारा विश्वास होता है, यकीन होता है.
So what the Buddha effectively says is, okay, show me this I.
तो फिर बुद्ध बहुत परिणामकारक से ऐसा कहते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो मुझे दिखाइए इस आई को या मैं को दिखाइए कहाँ है.
प्रूव इट,
साबित कीजिए.
लुक एंड फाइंड इट,
तो देखिए और उसकी खोज कीजिए.
सो the बेसिक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस इज ऑफ टेकिंग एवरी एलिमेंट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड सीइंग वेदर इट शोज अ फिक्स्ड आई.
तो फिर मूल बौद्ध अभ्यास ये है कि आपके अनुभव का हर अंश लिया जाए और उस अंश के भीतर खोज की जाए कि क्या इसमें कोई स्थायी ऐसा मैं है या नहीं है.
So, brothers and sisters, we're all sitting here.
तो भाइयों बहनों हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं.
We're all awake.
और हम सभी सजग है, जागे हुए हैं, जागृत हैं.
We're all having an experience.
और हम सभी कुछ ना कुछ किसी न किसी अनुभव को अनुभव कर रहे हैं.
We all have a picture of this room and of the people in it.
तो हम सभी को इस कमरे का चित्र दिखाई दे रहा है या इस कमरे में जो भी लोग बैठे हैं उन्हें हम देख पा रहे हैं.
We've got various thoughts about it, we've got various feelings about it.
तो उसके विषय में हमारे मन में बहुत सारे विषय विचार है, उसके विषय में हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं हैं.
So let's look systematically at this moment of experience right now.
तो एक पद्धतिबद्ध तरीके से हम इस अनुभव की ये जो हमारी पूरी प्रणाली है इसकी ओर देखेंगे.
The Buddhist tradition gives us many different classificatory systems.
तो वर्गीकरण करने के बहुत सारे अलग अलग जो तरीके हैं वो बौद्ध धर्म हमें देता है.
But the most basic and the one that you're probably all most familiar with is the classification of experience into 5 skandhas.
लेकिन एक जो बहुत ही मूलभूत है और शायद आप सब लोग उससे परिचित भी होंगे वो है वर्गीकरण की एक पद्धति जो पंच स्कंदों पर आधारित होती है.
स्कंद मीन्स हीप और कैटेगरी.
तो स्कंद का मतलब होता है वर्ग या ढेर.
सो वी कैन टेक दिस मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लुक एट एवरीथिंग विद इन दैट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग दैट मेक्स अप दैट एक्सपीरियंस एंड फिट इट इनटू वन ऑफ दोस 5 categories.
तो हम अनुभव का अपने एक ये हिस्सा ले लेते हैं और उस हिस्से को हम देखते हैं कि किस किस चीज से वो हिस्सा बना हुआ है, अनुभव बना हुआ है, या उसमें क्या क्या समाहित है और किस तरह से हम उसे वर्गीकृत कर सकते हैं.
So I'm going to go through these.
तो मैं इसके ये आपको बताने वाला हूँ.
But remember, this isn't just theory.
लेकिन याद रखिए कि ये केवल एक सिद्धांत नहीं है.
We're looking at now.
हम अभी में देख रहे हैं, इस क्षण में देख रहे हैं.
We're looking at what's happening right now.
तो हम इस और देख रहे हैं कि अभी इस क्षण में क्या हो रहा है.
And as best you can, try to follow the questions through.
और जितना आप अच्छे से उन प्रश्नों को समझ पाए उतना आप प्रयास कीजिए.
So let's start with the most obvious part of experience.
तो हमारे अनुभव का जो एक बहुत ही स्पष्ट जो अंश है हिस्सा है उससे हम शुरुआत करते हैं.
So the most obvious part of experience is that there seems to be something out there.
तो हमारे अनुभव का बहुत ही स्पष्ट एक हिस्सा ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे बाहर वहाँ कुछ है या हमारा अनुभव वहाँ है बाहर है.
My eyes are looking at something.
तो मेरी आंखें किसी चीज की ओर देख रही हैं.
My hand is touching something.
मेरा हाथ जो है किसी चीज को स्पर्श कर रहा है.
My nose is smelling something and so on.
मेरा नाक जो है किसी चीज की गंध ले रहा है और इसी तरह बाकी भी.
There seems to be a field of experience, a world.
तो ऐसा लगता है कि अनुभव का एक क्षेत्र है, एक विश्व है जिसका हम अनुभव ले रहे हैं.
बराबर. Yeah. If you can't experience that, well, you're not hearing me even.
तो अगर आप इसका अनुभव नहीं ले रहे तो शायद इस वक्त आप मुझे सुन भी नहीं रहे हैं.
Because I am part of that external world for you.
क्योंकि उस बाह्य विश्व का मैं भी आपके लिए एक हिस्सा हूँ.
You are part of that external world for me.
और उस बाह्य विश्व का आप मेरे लिए एक हिस्सा है.
And a very nice external world at this moment.
और इस क्षण जो है बहुत ही अच्छा ऐसा वो बाह्य विश्व है मेरे लिए.
But yeah, do you see what I mean? There's all the objects of our senses.
तो आप देख सकते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ. तो हमारे हर इंद्रिय से जुड़ा एक विषय होता है, एक वस्तु होती है.
And these are all things under the category of rupa.
और ये सारी जो वस्तुएं या विषय होती हैं, ये रूप इस वर्ग के अंतर्गत आती है.
What exactly that external rupa is, we won't go into that now.
तो वो बाह्य रूप क्या है वास्तव में, इसकी गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे.
Later Buddhist tradition has a lot to say about the real nature of what seems to be out there.
तो बाद के जो बौद्ध परंपराएं हैं उन बौद्ध परंपराओं के बाद पास उस बाह्य रूप के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है.
For the time being, we'll just accept there is rupa.
अभी के लिए हम केवल इतना मान लेते हैं, मानकर चलते हैं कि हाँ रूप है.
So can you see anything in rupa that is permanent?
तो रूप में क्या फिर ऐसी कोई वस्तु आप देख सकते हो जो कि नित्य है, जो कभी नहीं बदलेगी?
Can you say more particularly, can you see anything in rupa that is me?
तो रूप में क्या ऐसी कोई चीज आप विशेष रूप से देख पाते हैं कि जो मैं है?
Is this me?
तो हाथ या क्या वो मैं हूँ?
What myself really is, this body?
तो मेरा जो शरीर है क्या वही मैं हूँ?
How can it be?
वो कैसा हो, मतलब कैसा हो सकता है मेरा शरीर, मैं कैसा हो सकता हूँ?
Where was it before my mother gave me birth?
और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया उससे पूर्व वो कहाँ था?
Where will it be when I die?
और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद वो कहाँ होगा?
You know, when my body goes to cremation ground and is burned up, where is my eye?
तो एक तरह से स्मशान में मेरी मृतदेह को पहुंचाया जाएगा, वहां मुझे जलाया जाएगा, तो वहां मैं कहाँ हूँ?
And you know, every cell in my body is renewed all the time.
और मेरे शरीर की हर जो पेशी है, कोशिका है, वो हर क्षण जो है वो बदल रही है.
I believe that within about 5 years, every cell is completely renewed, doctors.
और मुझे लगता है डॉक्टर लोग बताएंगे कि हर 5 साल में जो है मेरे शरीर की हर पेशी जो है वो बदल जाती है.
So, you know, I met some of you 10 years ago.
तो आपको पता है कि आप में से कुछ लोगों को मैं 10 साल पहले मिला था.
I'm meeting an entirely different set of cells.
और उनसे जब मैं मिला था अब मैं पूरा ही अलग संच जो है कोशिकाओं का उनसे अब मिल रहा हूँ.
I have no idea who you are now.
और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अभी आप कौन हो.
Look at me, you know, I'm very different from when you first knew me.
और मेरी तरफ देखिए कि जब आप मुझे पहले जानते थे उससे मैं काफी अलग हूँ.
I was much nicer before, wasn't I?
Yes, very.
So, you know, that take obvious things, as I always point out, I used to have a lot of hair.
तो बहुत ही स्पष्टता से, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मेरे सर पे बहुत सारे बाल थे.
I've got a picture of myself when I was 5 years old.
तो मेरे पास मेरा एक चित्र है बचपन का, जब मैं 5 साल का था.
Oh, I was such a lovely little boy.
बहुत ही प्यारा सा बच्चा था.
I had long curly blonde hair.
और बहुत ही घुंघराले सुनहरे ऐसे मेरे बाल थे.
And I was only about that high.
और इतनी मेरी ऊंचाई थी बस.
Completely different body, really.
और पूरी तरह से जो मेरा शरीर था वो पूरा ही अलग था. I've seen that picture, so I know.
So, you know, how can we really think of the body as I?
तो हमारे शरीर के विषय में हम ऐसा कैसे सोचते हैं कि हमारा शरीर मतलब मैं हूँ?
If we think of the body as I, well then I is simply something that's created, constantly changes and then dies.
और अगर शरीर ही मैं हूँ तो फिर मैं तो ऐसा है कि जिसका निर्माण हुआ है और वो निरंतर बदल रहा है और फिर वो मृत हो जाता है.
So that just doesn't seem a satisfactory answer.
तो फिर वो उतना समाधानकारक ऐसा उत्तर हमें नहीं लगता है.
Just look. Is there anything that's fixed and permanent and you can say, oh, that's me?
तो आप देखिए क्या ऐसा कुछ है जो स्थायी है, नित्य है, बदलाव नहीं है उसमें, और उसकी तरफ आप उंगली करके बता सको कि हाँ ये मैं हूँ.
You know, maybe we can't go into it so deeply immediately, but we need to meditate on it.
तो उसकी गहराई में हम तुरंत ही अभी इतना नहीं जा सकते, उसके लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता हो.
And it's strange because we have such a strong feeling, this is my body.
और ये बहुत ही विचित्र है क्योंकि हमारी इतनी सशक्त भावना होती है कि ये मेरा शरीर है.
That's not my body.
और ये मेरा शरीर नहीं है.
That's what we feel quite sort of definitely.
तो बहुत ही निश्चित तौर पे हम इसको महसूस करते हैं.
But in what sense is it mine?
लेकिन किस अर्थ से वो मेरा है?
When it's not something that I have much control over.
तो जबकि वो ऐसा है जिसके ऊपर मेरा उतना नियंत्रण भी नहीं है.
You know, I'd really like to lose weight, but I just don't seem to manage it.
अभी मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि मैं अपना वजन कम करूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता है.
I'd really like to have a full head of hair.
तो बालों से भरे पूरे सर की मेरी कामना है, इच्छा है.
But nothing I can do seems to bring it back.
लेकिन जो भी मैं करता हूँ मतलब नहीं बोल सकता कि वो सारे बाल वापस आ जाएंगे.
I can't even stop getting ill.
या बीमार होने से भी मैं खुद को नहीं रोक सकता.
If I catch a virus, well, I can do something to minimize it or to hasten its departure, but I'm not able to control it.
अगर मुझे कोई वायरस से बाधा हो जाती है तो उसका परिणाम कम करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या उसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए मैं जल्दी में कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं रोक नहीं सकता, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है.
And you know, getting old, I've got no way of stopping that.
और उम्र बढ़ना, बूढ़ा होना, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस प्रक्रिया को रोक लूं.
So, when we look closely and honestly at the body, we can't find an I in it.
तो जब शरीर के और हम बहुत करीब से और बहुत ही प्रामाणिकता से, सच्चाई से देखते हैं तो हमें कोई भी मैं नहीं मिलता.
And even talking of it as mine is problematic.
और मेरा है ऐसा भी उसके विषय में बात करना, ये भी समस्याजनक लगता है.
Of course, saying it's mine implies it is an I that owns it.
और मेरा है ऐसा कहने का तुरंत ही अर्थ ये हो जाता है कि कोई मैं है जो उसका स्वामी है, मालिक है.
So we've got to look a bit further to see if there is an I that can own the body.
तो फिर हमें और आगे जाके इस बात को देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा कोई मैं है जो हमारे शरीर का मालिक है या स्वामी है.
So that the next of the skandhas is vedana is the Pali and Sanskrit word.
तो दूसरा जो अगला जो हमारा स्कंद है वो है वेदना, और ये संस्कृत और पाली शब्द हैं।
But it doesn't mean what it means in modern Indian languages.
लेकिन आधुनिक भारतीय भाषा में जो उसका अर्थ होता है वो इसका अर्थ नहीं है.
In Marathi and Hindi, vedana means painful feeling.
और मराठी और हिंदी में जब हम वेदना बोलते हैं तो उसका अर्थ ऐसा हो जाता है कि कोई दर्द वाली भावना, दर्द की भावना.
But in Buddhist Pali and Sanskrit, it means all feeling.
लेकिन बौद्ध संदर्भ में पाली या संस्कृत भाषा में उसका अर्थ होता है सभी प्रकार की भावनाएं.
इट मीन्स सुख वेदना, दुख वेदना एंड उपेक्षा वेदना, न्यूट्रल वेदना.
तो उसका अर्थ होता है सुखद वेदना, दुखद वेदना या उपेक्षा वेदना, यानी कि तटस्थ वेदना, जो ना सुखद है और ना दुखद है.
सो द पॉइंट इज दैट ऑल द टाइम व्हेन वी कॉन्टैक्ट रूपा इट गिव्स राइज टू ए सेंसेशन.
तो इसमें देखने वाली ये बात है कि जब भी किसी रूप के साथ हमारा संपर्क आता है तो उसमें से वेदना उत्पन्न होती है.
व्हेन वी पुट आवर हैंड इनटू हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, आउ इट हर्ट्स.
तो जब हम उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल देते तो हमें दर्द होता है.
सो दैट्स दुख वेदना.
और वो दुखद वेदना होती है.
When we put that gulab jamun into our mouths, we taste that delightful sweetness. That's sukha vedna.
और जब वो गुलाब जामुन हम अपने मुंह में ले लेते हैं और उसकी उस मिठास को चखते हैं तो वो एक सुखद वेदना निर्माण करता है.
I always take care to mention gulab jamun in my talks because then generally the kitchen provides them.
तो मैं ये खास तौर से ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने प्रवचन में एक बार तो गुलाब जामुन बोलूं क्योंकि फिर किचन वाले गुलाब जामुन दे देते हैं.
Anyway, you get what I mean, that this all the time our sensory experiences are giving us pleasure and pain or just boring, no feeling at all.
तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हर वक्त हमारे जो भी इंद्रिय जन्य संपर्क होते हैं उसमें से वेदनाएं निर्माण होती है, भले फिर वो सुखद हो या दुखद हो या तटस्थ हो.
Of course, these feelings of pleasure and pain are very important to us.
और निश्चित ही ये जो सुखद या दुखद वेदनाएं हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं.
We have a strong instinct to go towards the pleasure and resist the pain.
तो हमारी ये बहुत ही सशक्त ऐसी अंत प्रेरणा होती है कि जो भी सुखद है उसकी ओर हम जाएं और जो भी दुखद है उसको हम टाल दें.
And apparently there's an area of the brain, is it the hypothalamus, that when it's stimulated releases feelings of pleasure.
और हमारे जो मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, तो उसको जब कुछ मिलता है तो वो ऐसे चीज का स्राव करता है जो सुखद भावनाएं निर्माण करता है.
So some researchers did some rather unpleasant research.
तो कुछ जो संशोधक हैं उन्होंने कुछ संशोधन किया जिसके परिणाम उतने संतोषजनक नहीं थे, मतलब उतने सुखद नहीं थे.
They put an electrode in the brain of some monkeys.
तो उन्होंने कुछ बंदरों के मस्तिष्क में कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल दिए.
And they gave them a button.
और उन्होंने उनको एक बटन दे दिया.
Every time they pressed the button, the hypothalamus would be stimulated and they'd experience very great pleasure.
और हर बार जब वो बटन दबा देते तो वो हाइपोथैलेमस से उसको किसी प्रकार का उत्तेजन मिल जाता था और वो जो है सुखद भावनाओं को निर्मित कर देते.
And what happened was, of course, they just kept pressing it until they were, really in danger of dying.
और फिर इसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन्होंने वो उसको दबाते रहे और इस हद तक कि मतलब उनकी मृत्यु का खतरा निर्माण हो गया.
So pleasure and pain drive us very strongly.
तो एक तरह से ये जो सुख होता है और दुख होता है ये बहुत सशक्त रूप से हमको मतलब किसी चीज को करने की चालना देते रहता है.
But are they me?
लेकिन क्या वो मैं हूँ?
Am I pleasure or pain, those feelings of pleasure or pain?
या क्या मैं सुखद या दुखद वेदनाएं हूँ?
Well, fairly obviously not, because they come and go.
अब बहुत ही स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि वो आती जाती रहती है.
They're not stable.
और वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है.
They're dependent on circumstances. Huh?
और वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है.
So whilst conditions are there, that experience of pleasure, then it goes.
तो जब परिस्थितियां वैसी होती है कि जब आप आनंद का अनुभव करो तो वो होता है, जब वो नहीं होती है तो वो चली जाती है.
So I think it's fairly easy to see that you cannot identify vedana as I.
तो ये भी बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप वेदनाओं से अपनी पहचान नहीं बता सकते, कि ये वेदनाएं मैं हैं.
So the next skanda is samnya.
और फिर अगला जो स्कंद है वो है संज्ञा.
And of course, again, this doesn't mean what it means in modern Indian languages.
और एक बार संज्ञा का जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में अर्थ है वो अर्थ नहीं है हमारा.
It really samnya is our identification of the experience in our world.
तो संज्ञा का अर्थ होता है कि दुनिया में जो हमारा अनुभव होता है उस अनुभव को पहचानना.
I recognize that is a mat.
तो मैं इस वस्तु को पहचानता हूँ कि ये एक मैट है.
I apply a concept to it so I can identify it as different from something else.
तो मैं उसको एक संकल्पनाओं का संच के तहत देखता हूँ कि ये जो वस्तु है अन्य वस्तुओं से भिन्न है.
That's a ceiling.
वो छत है.
That's bharti.
और ये भारती है.
Do you see what I mean? So you're all the time identifying elements within your experience.
तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके अनुभव में जितने भी वस्तुएं होती है आप उस वस्तुओं की पहचान करते रहते हैं.
And of course from that comes our language and our ability to communicate.
और उसी में से जो है वो भाषा की निर्मिति होती है और हमारी एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता की.
All the time our minds are analyzing the world and labeling it.
तो हर समय हमारा मन जो होता है हमारे इर्द गिर्द के विश्व का विश्लेषण करते रहता है और उसको कुछ न कुछ नाम देते रहता है.
And we're constantly trying to work out what's going on.
और हम निरंतर इस को देखते रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं कि चल क्या रहा है.
You can see this sometimes when there's somebody in the far distance.
तो आप इसे देख सकते हैं जब कोई होता है जो बहुत दूर होता है.
And you see them coming closer.
और फिर आप देखते हैं कि वो करीब आ रहे हैं.
And you think, who's that?
और फिर आप सोचते हैं कि कौन है ये.
I think I know that person.
और मुझे लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ.
And then you think, oh, is that Mokshapriya?
और फिर आप सोचते हैं कि या ये मोक्षप्रिय है.
Oh no, maybe it's Chaitan.
नहीं.
Maybe there's some difference between them, yeah.
हाँ उनमें बहुत मतलब अंतर है.
So you try to find out the characteristics that distinguish Mokshapriya from Chaitan.
तो फिर आप उन विशेषताओं का मतलब खोज में लग जाते हैं कि आपको पता चले कि मतलब मोक्षप्रिय अलग है चेतन अलग है तो कौन सी बात अलग है.
For a start, Chaitan doesn't have white hair.
हाँ तो शुरुआत के लिए चेतन के जो बाल है वो सफेद नहीं है.
Anyway, you get my point.
तो आप समझ सकते हैं.
Oh. No, he doesn't have white hair. I know it's funny, but it does actually make the point, yeah?
तो मतलब मजाक की बात है ये, लेकिन ये हमारी जो बात है मुद्दा जो इसको स्पष्ट करता है.
Because we're trying to pick out characteristics in the world around us and identify them as this or that.
क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो भी बात है उनके गुणों को हम समेटते रहते हैं और उन गुणों के आधार पर हम उनकी पहचान करते रहते हैं.
So, sometimes we really quite strongly identify with our conceptualizations and with our views.
और कभी कभी हम बहुत ही इससे अपने आप को हमारी जो संकल्पनाएं होती है और हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपनी पहचान स्थापित करते हैं.
So is that me?
तो क्या वो मैं हूँ?
Am I really my interpretation of the world?
तो मेरा जो दुनिया का विश्लेषण है क्या वो मैं हूँ?
Well, of course, the problem here is that we don't do it all the time.
तो यहाँ पर समस्या ये होती है कि वो हमेशा ही हम नहीं करते रहते हैं.
Sometimes we get it wrong.
कभी कभी हम उसे गलत तरीके से भी कर लेते हैं.
And sometimes we change our interpretation.
और कभी कभी जो हमारा विश्लेषण होता है उसको हम बदल भी देते हैं.
So it's a constant, it's an activity rather than a thing.
तो ये कोई एक वस्तु नहीं है लेकिन एक गतिविधि है, एक क्रिया है जो हम करते हैं.
It's something we do rather than something we are.
तो ये ऐसी बात है कि जो हम करते हैं ना कि ऐसे जो हम हैं.
So it'd be hard to think of this faculty, this capacity as me.
तो इस क्षेत्र या इस क्षमता के विषय में इस तरह से देखना बहुत मुश्किल है कि ये मैं हूँ.
So yes, not rupa, not vedana, not samya.
तो हाँ, रूप नहीं है, वेदना में मैं नहीं है और संज्ञा में भी मैं नहीं है.
Well, what about our desires, our motivations?
तो फिर हमारी इच्छाओं का क्या, हमारी महत्वाकांक्षाओं का क्या?
Always in response to our experience, we have some reaction or response.
तो जो भी हमारे अनुभव होते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, उसको लेकर हमारी कुछ प्रेरणाएं होती है.
You know, I see it's raining, so I put up my umbrella.
तो मैं अगर ये देखता हूँ कि बारिश हो रही है तो मैं अपना छाता खोल लेता हूँ.
Because I want to keep dry.
क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहता हूँ, सूखा रहना चाहता.
So this is sankhara, samskara, or sankhara in Pali.
तो ये जो है ये संस्कार है या संखारा पाली में से कहा जाता है.
In a later tradition it's spoken of as chetana.
और जो उत्तरकालीन परंपराएं हैं बात की उसमें इसे चेतना कहकर भी संबोधित किया जाता है.
Another word that has a different meaning now from previously.
तो ये और एक ऐसा शब्द है जो अर्थ जिसका अर्थ अलग है अभी की भाषाओं की तुलना में.
So samskara is our constant making of choices, our constant desire.
तो संस्कार का अर्थ होता है हमारी निरंतर कामनाएं या हमारे चुनाव.
Again, I think it's fairly obvious that that can't be me because it changes all the time.
और फिर एक बार ये स्पष्ट है कि वो भी मैं नहीं हो सकता क्योंकि वो भी निरंतर बदलते रहते हैं.
There's nothing fixed about it, nothing permanent about it.
तो उनके विषय में भी कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, उनके विषय में भी कुछ ना बदलने वाला नित्य नहीं होता.
And you know, sometimes people have a lot of trouble making up their minds.
और कभी कभी तो लोगों को बहुत समस्या आती है कि किसी एक निर्णय तक पहुंचने के लिए.
Shall I have one gulab jamun or shall I have two?
तो क्या मैंने एक गुलाब जामुन खाना चाहिए या मैंने दो गुलाब जामुन खाने चाहिए?
And you just can't decide.
और आप तय ही नहीं कर पाते.
Or shall I have gulab jamun or barfi?
Barfi.
Barfi.
No.
Oh, is it?
I thought barfi.
No, not barfi. That's another question.
तो या मैं गुलाब जामुन, या मैंने गुलाब जामुन लेना चाहिए या मैंने बर्फी लेनी चाहिए.
So sometimes quite hard to choose, quite hard to decide.
तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है चुनना, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है निर्णय लेना.
It's not really possible to identify yourself with this making of choices.
तो इस तरह से निर्णय लेने की इस प्रक्रिया के साथ भी मैं को देखना, मैं को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता.
When you were a child, there were things that you liked, which you're really not interested in anymore.
तो एक जब बचपन में हो सकता है ऐसी कोई चीजें होंगी जो आपको बहुत पसंद थी और शायद अभी आपको उसमें बिल्कुल भी रुचि ना हो.
So yes, it's too changeable to be I.
तो बहुत ही वो इतनी ही तीव्रता से तेजी से बदलता है कि वो मैं नहीं हो सकता.
So that leaves one skanda.
तो अब एक ही स्कंद है हमारे पास शेष रह गया है.
And that's vijnana.
और वो है विज्ञाना.
Which means consciousness.
और जिसका अर्थ होता है चेतना.
You see the problem because these words have changed their meaning.
आप देख सकते हैं कि ये शब्द जो है तुरंत ही उसका अर्थ बदल देते हैं.
So vijnana is very difficult to define really.
तो एक तरह से विज्ञान की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है.
It's simply our awareness.
वो एक तरह से केवल हमारी जागृति होती है.
All these rupa, all this rupa is here.
तो ये सारा रूप जो है वो यहाँ पर है.
All these vedana are here, these responses.
तो सारी वेदनाएं उस रूप को दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर है.
All these interpretations.
सारे विश्लेषण यहाँ पर है.
All these urges, desires.
और सारी हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं यहाँ पर है.
And I'm aware of them.
और मैं उनके विषय में जागृत हूँ.
When you're asleep or when you're dead, there's no awareness, huh?
तो जब आप सोते हैं या जब आप मृत हो जाते हैं तब वहां पर जागृति नहीं रहती है.
Actually, it's not quite true because when you're asleep, there is an awareness, but it's of a rather different kind.
तो ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि जब आप सोते हैं तो एक प्रकार की जागृति होती है लेकिन वो बहुत ही अलग प्रकार की जागृति होती है.
That's the point.
और यही हमारा मतलब मुद्दा है.
Awareness isn't just a single thing.
तो ये जो जागृति है ये भी एक कोई एक ऐसी चीज नहीं है.
In Buddhist psychology, it's said that consciousness is momentary.
और बौद्ध मनोविज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जागृति जो है वो क्षणिक होती है.
It's constantly arising and re-arising and re-arising.
और वो निरंतर रूप से उत्पन्न होती है फिर उत्पन्न होती है और फिर उत्पन्न होती है.
It's more like a river than a mountain.
तो एक पर्वत के होने के स्थान पर पर्वत के जैसे होने के स्थान पर वो एक नदी के जैसे है.
You know, the mountain is just there, the river is constantly changing.
तो जैसे पर्वत होता है अपने स्थान पर वही अड़िग होता है लेकिन नदी जो है वो निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में होती है.
But the consciousness is changing moment by moment.
तो ये जो जागृति होती है हर क्षण जो है वो बदलते रहती है परिवर्तित होते रहती है.
Quite interesting giving a talk about these things.
तो इन चीजों के बारे में प्रवचन देना या बात करना बहुत रोचक होता है.
Because when I'm talking about consciousness, I'm trying to get you to think about consciousness.
क्योंकि जब मैं जागृति के विषय में बात कर रहा होता हूँ तो मैं मेरा प्रयास रहता है कि आप जागृति के विषय में सोचने लगे.
Which means I'm aware of you all as conscious.
तो जिसका अर्थ होता है कि मैं इस विषय में जागरूक हूँ कि आप सभी जागरूक हैं.
And I can sort of see consciousness around me. And it comes and goes. It's stronger sometimes, it's weaker sometimes, it's more scattered sometimes, it's more focused sometimes.
तो मैं अपने इर्द गिर्द जो है जागृति का जो बदलाव है उसको निरंतर अनुभव करते रह सकता हूँ. कभी वो कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बिखरी हुई होती है, कभी इकट्ठा होती है, कभी एकाग्र होती है, और वो हर क्षण जो है बदलती रहती है.
If you're trying to give a talk or trying to communicate something, you really need to be aware of people's awareness.
तो जब आप प्रवचन दे रहे हैं या किसी चीज के विषय में बात कर रहे हैं तो लोगों की जागृति के विषय में आपको जागृत रहना पड़ता है.
If people have got their eyes closed or looking somewhere else, there's not really much point in speaking.
तो अगर लोगों की आंखें बंद हो रही है या वो कहीं और चले गए हैं तो फिर बोलने में इतना कोई मतलब नहीं रह जाता बोलने का.
You want to speak to live consciousnesses.
तो जो जिंदा दिली से भरे या जिंदा ऐसे जो जागृति है उस जीवित जागृति के साथ संपर्क करना आपको अच्छा लगता है.
You're a wonderful audience. You're very awake.
तो आप बहुत अच्छे श्रोता हैं. आप सारे ही लोग जागृत हैं.
But still, everybody, mine included, that consciousness is the light is going on and off, going up and down.
लेकिन फिर भी सभी की जागृति का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनकी जागृति का जो प्रकाश है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है.
There's a dimmer switch.
तो कभी हल्का है, कभी तेज है.
When I
एक बटन है कम ज्यादा करने वाला.
When I say something that really interests you, the dimmer switch goes on full. Bright.
जब मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो बटन पूरा घूम के एकदम तेज रोशनी तक पहुँच जाता है.
When I say something a bit that isn't really interesting you, the dimmer switch goes very low.
और जब मैं ऐसा कहता हूँ जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, तो फिर वो प्रकाश एकदम धीमा हो जाता है.
I try my best to keep the dimmer switch high.
तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि रोशनी जो है वो तेज रहे, बटन उस स्थान पे रहे.
But I have to be careful that the switch doesn't burn itself out as well.
लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो स्विच जो है वो अपने आप को जला ना ले.
But you see what I mean? Consciousness isn't a thing.
तो लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जागृति जो है वो एक वस्तु नहीं है.
इट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्लो ऑफ मोमेंट्स ऑफ अवेयरनेस.
तो जागृति से भरे हुए क्षणों का वो एक निरंतर बहाव है.
ऑफ कोर्स ईच मोमेंट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन.
अब निश्चित हर क्षण जो है अपने से पहले क्षण से संबंधित है.
बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट.
लेकिन वो उस गत क्षण से अलग है.
इन बुद्धिस्ट फिलोसफी इट्स सेड दैट ईच मोमेंट इज कनेक्टेड टू द अदर वन बाय कंटिन्यूटी ऑफ कंडीशंस.
तो बौद्ध परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण दूसरे क्षण से जुड़ा हुआ होता है एक अनुभव की निरंतरता के माध्यम से.
But there's no identity. It's not the same thing in each moment.
लेकिन उन दोनों में कोई भी समानता नहीं होती है. दोनों क्षण जो है वो समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, एक नहीं होते.
So Buddhist philosophy is concerned with continuity of conditioned arising.
तो इसलिए बौद्ध धर्म इस बात से संबंधित है कि कंटिन्यूटी ऑफ
कंडीशन्ड अराइजिंग.
तो जो संस्कार या परिस्थितियों के आधार पर जो निर्माण होने वाली बात है उसमें एक निरंतरता के इस पे वो संबंधित है.
सो इफ देयर इज दिस कांस्टेंट चेंज वी कैनॉट फाइंड इन इट आई.
तो अगर इस प्रकार का निरंतर बदलाव वहां पर है तो उस बदलाव में हम कोई मैं नहीं खोज पाते.
So when we analyze all the elements of our experience in this way, we find that every one of them is continuously changing.
तो जब हम हमारे अनुभव के सभी अंशों का इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर कोई ऐसा तत्व नहीं है जो ना बदलने वाला.
So we cannot find an I.
तो इसलिए हम किसी भी मैं को नहीं खोज पाते.
This is the basic method of getting rid of the belief in I.
और ये जो है बौद्ध मूलभूत तरीका है जो आपको आपके मैं से छुटकारा दिला सकता है.
Go looking for it.
कि आप उसकी खोज में निकलो.
Look into your experience and see if you can find it.
तो अपने अनुभव के अंदर झांक कर देखो और देखो कि क्या आप उसको ढूंढ सकते हो.
Of course, some people and maybe particularly some religions say, the I is beyond experience.
अब निश्चित ही कुछ धर्म ऐसे हैं और कुछ मान्यताएं ऐसे जो कहती है कि हाँ ये जो मैं है वो अनुभव के परे है.
But that just means it's useless.
तो फिर उसका अर्थ तो यही होता है कि अगर वो अनुभव के परे है तो वो कोई मतलब का ही नहीं, इसका कुछ उपयोग ही नहीं है.
It's just an idea. It has no corresponding reality.
तो वो केवल एक कल्पना है और जिस कल्पना से जुड़ी हुई कोई भी वास्तविकता नहीं है.
So Buddhism asks us to look very closely, very intensely at our experience.
तो बौद्ध धर्म जो है बहुत ही करीब से और बहुत ही तीव्रता से हमें अपने अनुभवों की ओर देखने के लिए कहता है.
And really convince ourselves that there is no I.
और अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए कि वास्तव में ऐसा कोई मैं नहीं है.
First of all, you need to just get clear what the teaching is.
सबसे पहले तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझना है कि ये शिक्षा आपको क्या बता रही है.
I've talked about these five skandhas. Well, get clear what they are.
तो मैंने आपको इन पांच स्कंधों के बारे में बताया है तो आप इस विषय में स्पष्ट हो जाइए कि ये पांच स्कंध क्या है.
Get clear what is being said.
तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि आपको क्या बताया गया है.
This is called the wisdom that comes from hearing.
तो ये इसे इस तरह से कहा जाता है कि ये वो प्रज्ञा है जो किसी चीज को सुनने से आती है.
श्रुतमय प्रज्ञा.
तो इसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं.
प्रज्ञा दैट इज कंसिस्ट्स इन हियरिंग श्रुति.
तो वो प्रज्ञा जो सुनने से आती है, सुनने से श्रुत.
Then once you've got the teaching clear and you know how to apply it, then think.
और एक बार जब ये शिक्षा आपको स्पष्ट हो जाती है, इसका उपयोग कहाँ करना है ये आपको स्पष्ट हो जाता है, तब उसके बारे में सोचिए.
Test it to destruction.
और उसे इस तरह से परीक्षण कीजिए उसका कि जैसे आपको उसे नष्ट ही कर देना है, झूठा साबित कर देना है.
Really look with that critical, analytic intellect at your experience to see whether you can find it true or not.
चिकित्सक या बौद्धिक ऐसा जो विश्लेषण होता है उस तरह से उसका उसकी जांच कीजिए कि वो सच है भी या नहीं.
The Buddha Dhamma asks us to think.
तो बौद्ध धर्म हमें सोचने के लिए कहता है.
It asks us to investigate.
तो वो हमें कहता है कि परीक्षण करो, जांच करो.
Don't just accept this is what's true. Have a look and see.
तो सिर्फ इतना मत मानो कि ये सच है, जाओ उसको देखो.
We can all do it. We've all got experience, so we can all investigate it.
हम सभी ये कर सकते हैं क्योंकि हम सभी के पास अनुभव है, इसलिए हम सभी जांच कर सकते हैं.
Look and see whether you can find I.
तो देखिए, जाइए, देखिए और देखिए कि क्या आप किसी मैं को खोज पाते हैं.
You can use that categorization into five skandhas.
तो पांच स्कंधों का ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
यू कैन यूज सम अदर सिस्टम,
या आप किसी अन्य भी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं।
इफ यू गॉट अ केक, इट कैन बी कट इन मेनी डिफरेंट वेज।
तो अगर आपके पास केक है तो आप कई प्रकार से उसको काट सकते हैं।
बट रियली थिंक,
लेकिन वास्तव में या वाकई में सोचिए।
थिंक इन अ सिस्टमैटिक एंड थरो वे।
तो एक पद्धतिबद्ध तरीके से और एक पूरी गहराई से उससे सोचिए।
दिस इज द विजडम दैट कंसिस्ट्स इन रिफ्लेक्शन और थिंकिंग।
तो ये जो प्रज्ञा होती है, इसको हम कहते हैं कि ये चिंतन से आई हुई प्रज्ञा है।
चिंतनमयी प्रज्ञा,
इसे चिंतन में प्रज्ञा कहते हैं।
सो इफ यू एंगेज इन दिस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद सफिशिएंट विगर and strength, it leads to a consequence.
तो अगर पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति के साथ इस प्रकार के विश्लेषण में आप शामिल होते हैं तो वो आपको सच्चाई तक पहुंचाती है।
You become convinced.
और आप उस विषय में यकीन करने लगते हैं, वो आपका यकीन बन जाता है, विश्वास बन जाता है।
Not just intellectually convinced.
तो केवल बौद्धिक स्तर पर आप विश्वास नहीं करने लगते हैं, आपका यकीन नहीं होता।
Not just because of a logical process.
और इसलिए भी वो विश्वास नहीं होता है कि ये सारी बातें तर्क आधारित है, तर्क संगत है।
But you really see that there is no I.
लेकिन आप इसलिए क्योंकि आप वास्तव में देख लेते हैं कि कोई मैं नहीं है।
And if you do this vigorously enough, thinking just stops.
और अगर पर्याप्त ऊर्जा के साथ आप इसे करते हैं तो वो जो आप की सोच होती है वो बंद हो जाती है।
And you just sit in the conviction that there's no I.
और फिर आप उस यकीन को साथ लेके, यकीन के साथ बैठते हैं कि हाँ, कोई मैं नहीं है।
And then when you let go of that clinging, a new kind of consciousness begins to emerge.
और फिर जब आप उस आसक्ति को छोड़ देते हैं तो एक नई प्रकार की जो जागृति है वो उभरने लगती है, वो उत्पन्न होने लगती है।
सो दिस इज द सेकंड ऑफ आवर टू मेन मेथड्स फॉर रिफॉर्मिंग द माइंड।
तो मन में बदलाव लाने के या मन को परिवर्तित करने के जो हमारी पद्धतियां थी, इसमें से ये दूसरी एक प्रमुख पद्धति है, पहलू है इसका।
द फर्स्ट इज द मोस्ट बेसिक।
पहला जो है वो बहुत ही मूलभूत है।
And we spoke about that this morning a little bit this afternoon.
और उसके विषय में हमने थोड़ी सवेरे बात की थी और थोड़ी अभी दोपहर में भी बात की है।
But all of us need to begin to reflect more deeply on our experience right now.
लेकिन हम में से हर एक को हमारा अभी का, वर्तमान क्षण का अनुभव क्या है, उसके विषय में चिंतन करने की और गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है।
And if you do that, you will begin to find quite big changes taking place in your experience.
और अगर आप इसे करना आरंभ कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अनुभव में काफी बड़े बदलाव आए हैं।
And you'll begin to experience things in a much more free and open way.
और आप बहुत अधिक मुक्त और खुली तरीके से चीजों का अनुभव ले सकेंगे।
You'll begin to experience things more like a bodhisattva.
और एक बोधिसत्व की तरह आप चीजों का अनुभव लेने लगेंगे।
So I hope all that wasn't too heavy for your heads.
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके मस्तिष्क के लिए उतना भारी नहीं होगा।
And even though in a way it's quite tough material, it's very relevant.
तो एक तरह से भले ही ये समझने के लिए काफी मुश्किल ऐसी सामग्री है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण ऐसी भी है।
And we need to have some grasp of it.
और इसकी थोड़ी बहुत समझ हमें होनी चाहिए।
This is the most distinctive part of the Buddha's teaching.
और बौद्ध की जो शिक्षा है उसका ये बहुत ही उल्लेखनीय ऐसा ये भाग है, अलग ऐसा भाग है।
I'm not aware of any other teaching that goes into this.
और मैं ऐसी दूसरी अन्य किसी भी शिक्षा के बारे में नहीं जानता है जिसमें इस तरह से इस विषय में बात की गई।
And it's the most powerful tool for getting rid of superstition, false ideas that there can be.
और जो भी हमारे अंधविश्वास है या मिथ्या हमारी कल्पनाएं हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी ऐसा साधन है, ये पांच स्कंध।
I hope that you have some good discussion about this
तो मैं आशा करता हूँ कि इसके विषय में भी आपकी कुछ अच्छी चर्चा होगी।
I'm sure there will be some confusion to clarify.
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ संभ्रम भी होगा जिसको मैं बाद में स्पष्ट कर सकूँ।
Of course, unless I've been so clear that you're all now enlightened.
अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब ऐसा उसी स्थिति में होगा कि मैंने इतना स्पष्ट रूप से सब आपको स्पष्ट कर दिया है कि आप सब बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं।
But I hope you've got an idea of the essence of Buddhist mind training.
लेकिन मुझे उम्मीद है कि बौद्ध मन को प्रशिक्षित करना जो कल्पना है उसके मुख्य भाग में क्या है या उसके सार में क्या है ये आपने देख लिया होगा।
All you have to do now is do it.
और अब आपको बस इतना ही करना है कि आपको वो करना है।
And good luck. May the force be with you. For those who've watched Star Wars. Namo Buddhaya, Jai Bhim.